श्री श्री गौर निताय अभिषेक की तो ज्योति और प्रकाश लालवाणी जी के निवास स्थान पे आज भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य के उपलक्ष में अभिषेक रखा गया गौर निताय का। आप सबने उसमें भाग लिया, भगवान को भोग लगा, आरती हुई। ये दर्शन करना भी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। रविवार के दिन आज सब आप लोग लालवाणी परिवार के निवास स्थान पे पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस परिवार और सहयोगी भक्तों का धन्यवाद करते हैं जो अपने घर को भगवान का घर समझकर और सेवक बन के स्वयं पूजा करके दूसरों को भी भगवान की सेवा का सुंदर अवसर देते हैं और हरि कथा और कीर्तन से मानव समाज का सबसे उत्तम सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है उसके विषय में श्री चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे। तो उनके अवतार का उद्देश्य क्या है, उनका तत्व क्या है, वो है कौन, इससे पहले आप 2 मिनट हमारे साथ इस कीर्तन में भाग लीजिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Thank you. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व और उनके अवतार का बहिरंग कारण का श्रवण करेंगे। एक श्लोक का भाव पहले पढ़ते हैं। अनार्पित चिरिम चिराता अनार्पित, अनार्पित का मतलब अर्पित नहीं किया गया था, दिया नहीं गया था। कब से? चिरात चिरम, चिरम चिरात बहुत काल से, बहुत समय से दिया ही नहीं गया था। क्या नहीं दिया गया था? कारुण्य अवतार कलौ, जो बहुत समय से नहीं दिया गया था वो करुणा अवतार। करुणा अवतार क्यों कहते हैं? करुणामयी कौन है? करुणामयी राधे, करुणा भरिते राधे, राधा रानी करुणा कृपा की मूर्ति है। आप देखिए हम गुरु जी को क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी के आगे पुस्तक में क्या लिखा होता है, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। तो ये कृष्ण की कृपा की मूर्ति जो गुरु जी है, ये कृपा कहाँ से आती है उसके पास? कृपा राधा रानी की है। गुरुदेव जो कृपा करता है वो राधा रानी का प्रसाद है। गुरुदेव राधा रानी का प्रतिनिधि है और श्री गुरुदेव बलराम जी का प्रतिनिधि है, जिसकी शक्ति से वो आध्यात्मिक हमको शिक्षा देते हैं। तो करुणामयी राधे, उस राधा के भाव को लेकर अवतीर्णा अवतार लिया। कृपा और करुणा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा के भाव को अंगीकार किया और राधा के रंग को अंगीकार किया, कांति को अंगीकार किया। कब? कलौ, कलयुग में। क्या दिया? समर्पित किया, दिया जो बहुत काल से नहीं दिया गया था वो दिया, करुणा करके दिया। क्या? उन्मत उज्ज्वल रस, उन्मत उज्ज्वल रसम, उन्मत उज्ज्वल रस। आप बहुत समय से कृष्ण भावना अमृत संघ में आ रहे हैं। पांच रस हैं जो सब इस दुनिया में जो भी जीव है प्रकृति पृथ्वी के ऊपर, उनका भगवान से किसी न किसी एक रस में संबंध है। तो ये पांच रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो आप जानते हैं ये हम सबका भगवान के साथ संबंध है और ये संबंध इन पांच ही रसों में होता है। एक शांत रस में जैसे भगवान बड़ा है, सभी लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान को मानने वाले शांत रस में भगवान के भक्त होते हैं। उससे ऊपर के भक्त होते हैं दास रस में, जैसे हनुमान जी रामचंद्र के भक्त हैं। तो उनका संबंध क्या है? दास का। भगवान स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। आप देखेंगे जब भी किसी को दीक्षा गुरुजी देते हैं तो उसके पीछे नाम दास रखते हैं। इसका मतलब उसको दास भक्ति में स्थापित करते हैं, क्योंकि दास हमारा स्वरूप है, हमारी पहचान ही है कि हम भगवान के दास हैं। तो दास से ऊपर है सखा। भगवान से किसी का मित्र का संबंध है, जैसे अर्जुन का कृष्ण मित्र है, जैसे भगवान रामचंद्र के गुह्य एक गरीब जंगली राजा मित्र हो गया, एक वानर राज सुग्रीव मित्र हो गया, तो भगवान के मित्र हैं। तो हम में से किसी का भाव भगवान का मित्र का है, कोई किसी का मित्र का रस है। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब भगवान हमारे बालक हैं, हम उसके माता पिता हैं। जैसे नंद बाबा है, यशोदा है, कहते हैं वह भगवान हमारा पुत्र है। कौशल्या है, रामचंद्र को अपनी बेटा मानती है। तो ऐसे बहुत से भारत में भक्त हैं, घर में छोटा लड्डू गोपाल रखते हैं, कहते हैं हमारा बालक है। तो भगवान से हमारा जो वात्सल्य रस है, वो किसी न किसी का वो रस है। और पांचवा रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस का मतलब भगवान हमारे प्रीतम है, हम भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, लक्ष्मी नारायण से प्रेम करती है, सीता राम जी से प्रेम करती है। ये जो प्रेम का रस है, ये सबसे ऊपर का रस है, इसको कहते हैं उन्मत्त उज्ज्वल रस। यहां लिखा है उन्मत्त उज्ज्वल रस। तो उन्होंने क्या आकर दिया? सबसे ऊपर का रस दिया। इसमें सारे रस अपने आप आ जाते हैं। जो प्रेम करता है वो सेवा भी करता है, वो मित्रता के साथ जैसा व्यवहार भी करता है। ऐसे नीति शास्त्र में लिखा है पत्नी के लिए, जब भोजन खिलाए तो माता के भाव से खिलाती है, मातृवत लिखा है, प्रेम से खाओ। जब कोई समस्या है, बातचीत करते हैं तो मित्रवत, जैसे मित्र एक दूसरे को सखा देते हैं, ऐसे सलाह देती है। भोगेशु भार्यावित रंभावित, ऐसे शब्द लिखे हैं शास्त्र में। प्रेम करती है तो रंभा जब अप्सरा जैसे करती है, और जब मशवरा देती है तो मित्र की तरह देती है, और जब भोजन खिलाती है तो मातृभाव से खिलाती है। तो ये सब भाव प्रेम करने वाले में ये सब भाव होते हैं। वो सेवक भी होता है, वो सखा भी होता है। उसका भाई जैसे बच्चे को कहते हैं ये मत खाओ ये खाओ, जैसे प्रेम करते हैं उसको ऐसे भी कहते हैं ये मत खाना ये खाना। तो वो हमारे स्नेह के कारण। तो ये सब रस हैं। हम में से भगवान के साथ किसी एक रस में हम जुड़े हुए हैं, उसका हमको पता नहीं। और इसलिए हमने इस दुनिया में यही संबंध हमने दुनिया में बनाने का प्रयास किया है। किसी को मित्र बनाया है, किसी को मालिक बनाया है, किसी को सेवक बनाया है, किसी को माता पिता बनाया है, किसी को प्रेमी बनाया है। लेकिन इस दुनिया के ये सारे संबंध थोड़ा समय रहते हैं, फिर परेशानी चालू हो जाती है। ये संबंध संसार में धोखा देते हैं, इसमें ज़्यादा लंबा रस चलता नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ये संबंध हमारे स्थायी है, उसको हम भूल गए हैं, इसलिए हम इस दुनिया में ऐसे संबंध रखने का प्रयास करते हैं। तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही तो केवल ये संबंध हमारा उनके साथ कैसे जुड़े इसके लिए है। तो उन्मत्त उज्ज्वल रस का मतलब सबसे ऊपर का भगवान से प्रेम करने वाला रस। इसको बोलते हैं पांचवा पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ सब जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पांचवा पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। इसको कहते हैं परम धर्म। एक धर्म होता है स्वर्ग तक ले जाने वाला। आप देखेंगे जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं अथवा मजहब है, उन सब का एक ही लक्ष्य है कि हम स्वर्ग तक कैसे जाएं। हमको स्वर्ग में भोग चाहिए, सुख चाहिए, अप्सराएं चाहिए। स्वर्ग में हमारे को पीने के लिए अमृत चाहिए। सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। देख लो मुसलमान को देखो, कहेगा जन्नत जाएगा। कृष्ण को देखो तो कहेगा हेवन में जाएगा। और हिंदू भी कहेगा कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन चिट्ठी लिखता है तो क्या लिखता है? दादाजी का स्वर्गवास हो गया, बड़ा दुख से लिखना पड़ता है। तो स्वर्ग में जाना इतना अच्छा तो नहीं है, दुख से क्यों लिखता है? चिट्ठी में तो लिखता है बड़ा दुख हो गया कि दादाजी स्वर्ग चले गए। अरे स्वर्ग तो अच्छा है, दादाजी गया तो खुश रहो ना, इसका मतलब स्वर्ग अच्छा नहीं है, इससे ऊपर का धर्म है मुक्ति का। जो ज्ञानी लोग हैं कहते हैं हम मुक्त होंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये उससे ऊपर का धर्म है। उससे ऊपर का धर्म है भगवान के वैकुंठ धाम में जाना, भगवान जैसा रूप हो जाए, भगवान जैसा शक्ति हो जाए, भगवान के लोक में निवास मिल जाए, भगवान का सानिध्य मिल जाए, इसको बोलते हैं मुक्ति। इससे ऊपर धर्म है परम धर्म। बोला वो परम धर्म क्या है? बोला प्रेम रूपा, उसमें भगवान से प्रेम करना है। बोला उसका उदाहरण कौन है? बोला गोपियां। जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं वो उसका उदाहरण है, जिस प्रेम में कोई संसार का गंध भी नहीं है, संसार का कोई थोड़ा सा लेस मात्र इच्छा भी नहीं है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता करना है, ये परम धर्म है। और ये उन्मत्त उज्ज्वल रस इस परम धर्म को कहते हैं। ये नहीं दिया गया था। बोला वो है क्या? स्वभक्ति ही श्रियम। स्वभक्ति मतलब अपनी भक्ति। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। कृष्ण अपनी भक्ति देना चाह रहे थे। और श्रियम का मतलब क्या? खजाना, भगवान के प्रेम का खजाना, वो देने के लिए आए। भगवान अपने प्रेम का खजाना देने के लिए आए। अन्य स्थान पे लिखा है चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम। चिराद अदितम, चिरकाल से नहीं दिया गया था, बहुत समय से नहीं दिया गया था, फॉर लॉन्ग टाइम इट इज नॉट बीन बेस्टोड। क्या? निजगुप्त वित्तम। निज का मतलब पर्सनल, गुप्त का मतलब कॉन्फिडेंशियल, वित्तम का मतलब धन, अपना जो सबसे रहस्यमय धन है जो बहुत काल से नहीं दिया गया था, वो क्या है? स्वप्रेम, वो है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। वो कैसे है? नाम अमृतम, नाम के रूप में, नाम के अमृत के रूप में, जो नहीं दिया गया था वो देने के लिए आए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अति उदार गौरा, चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है। पामर तामर नहीं देखते हैं, पापी तापी नहीं देखते, सबको दे रहे हैं। कृष्ण प्रेम की माला बनाई है, जो भी आए उसके गले में डाल रहे हैं। कैसा है ये नहीं देख रहे, कौन है ये नहीं देख रहे, सबको दे रहे हैं। तो यहां लिखा है जो बहुत समय से नहीं दिया गया था वो उन्मत्त उज्ज्वल रस अपना प्रेम के खजाने के रूप में करुणा अवतार ने दिया कल युग में। अब वो अवतार कौन है जिसने दिया? कहते हैं हरि ही, वो हरि है। भगवान को हरि क्यों कहते हैं? एक भगवान के हरि का अर्थ है अपने भक्तों का दुख ताप संताप हर ले, इसलिए उसका नाम है हरि। हरि का मतलब हमारे दुख को हर ले, दुख को ले जाए, कष्ट को ले जाए, इसलिए हरि कहते हैं। और दूसरा हरि का मतलब है प्रेम दई मन हरे, इतना प्रेम देते हैं कि हमारे मन को भी हर लेते हैं भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है मनोहर, मुरली मनोहर। भगवान का नाम है मनोहर, मन को हरने वाला। तो हरि कौन है जो मन हर लेता है? और मन ही क्यों हरता है? क्योंकि हमारे दुख का कारण मन है। हमारे एक शरीर में दूसरे शरीर में जाने का कारण मन है। मन ही संसार में हमको भटकाता है, और भगवान उसको हर लेते हैं तो फिर हमारा संसार में भटकना खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा भगवान दुख हरने का काम करते हैं। हरि ही पुरट सुंदर द्युति, पुरट कहते सोने को, और सुंदर द्युति का मतलब रंग, सोने के रंग में, गोरे रंग में। कदम्ब संदीपम, संदीपतः, और नाना प्रकार के प्रकाश के साथ। अभी सोना है तो चमकता है, ऐसे चमकते हुए कौन आए? अब कहते सदा हृदय, सदा वो हमारे हृदय में, सदा हृदय कंद्रे, कंद्र कहते हैं हृदय की गुफा, ये आपका एरिया का नाम है काली गुफा, क्या कहते हैं
महाकाली
केव्स, केव का मतलब गुफा। तो हमारे हृदय की गुफा में वो स्पृत वह, वो हमारे गुफा हृदय में प्रकट हो जाए। कौन अब नाम ले रहे हैं, वह सची नंदन, वो सची माता के यहाँ प्रकट है। सची नंदन किसका नाम है, चैतन्य महाप्रभु का। जैसे यशोदा नंदन नाम किसका है, कृष्ण यशोदा नंदन और चैतन्य महाप्रभु सची नंदन। तो सची नंदन ने क्या किया, इसका मतलब कल युग में हमको कृष्ण प्रेम प्रसाद के रूप में बांट के दिया, ये उनका बड़े से बड़ा काम है जो कई युगों से नहीं दिया गया था। अब आगे ये इस सारी कथा को पढ़िए और सुनिए। अब कहते हैं पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और उसको कहते हैं ब्रजेंद्र कुमार। ब्रज का इंद्र मतलब ब्रज का राजा मतलब नंद बाबा, कुमार मतलब उसका बेटा। गोलोक ब्रजे रस नित्य विहार, वो हमेशा अपने धाम गोलोक में नित्य विहार करते हैं और कभी कभी इस धरती के ऊपर ब्रज में आते हैं। तो भगवान की दो लीलाएं हैं, एक भगवान की लीला रो नित्य हो रही है, आज भी हो रही है और सदा के लिए होती रहती है, लेकिन वो लीला दिखती नहीं है, उसको कहते हैं अप्रकट लीला, अनमैनिफेस्टेड पास्ट टाइम्स। वो तो आज भी हो रही है, कभी कभी कृपा करके वो अवतार जब लेते हैं तो लीला हो जाती है प्रकट। तो कभी कभी प्रकट लीला इस धरती के ऊपर वृंदावन में आके करते हैं ब्रज में, लेकिन सदा उनकी लीला गोलोक धाम में हो रही है। तो ये भगवान की दो लीलाएं हैं, जो भागवत में लिखी है जो शास्त्रों में लिखा है वो भगवान के अवतार काल की लीला है, लेकिन भगवान की नित्य लीला तो निरंतर हो रही है। तो वो भगवान श्री कृष्ण का काम है नित्य लीला करना। और अब कहते हैं वो कृष्ण कब अवतार लेते हैं, ब्रह्मा रे एक दिन लेते हूं एक बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतीर्ण हया करे ना प्रकट विहार। वो नित्य विहार तो गोकुल में करते हैं, गोलोक में करते हैं, अपने धाम में नित्य विहार करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में वो धरती के ऊपर आते हैं और यहां अपना प्रकट लीला करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, तो ब्रह्मा जी के अब कितनी उम्र हो गई, 50 साल हो गए ब्रह्मा जी के, तो कितनी बार कृष्ण आए, 50 साल 12 महीना साल में और महीने में 30 दिन एक दिन में आते हैं, तो कितनी बार कृष्ण आए, एक बार नहीं आए, कृष्ण इतनी बार इस धरती पे आ चुके हैं। कहते हैं एक बार वो ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं और फिर कहते हैं सत्य त्रेता द्वापर कली चारे युगे जानी, हम जानते हैं चार युग है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कली युग, से चारी युगे दिव्य एक युग मानी, इन चार युग को एक दिव्य युग कहते हैं। अब कहते हैं एक ब्रह्मा जी के दिन में ऐसे कितने युग होते हैं, 71 चतुर्युगे एक मनवंतर, 71 बार चार युग बदलते हैं ना, तो एक मनु का शासन होता है। और फिर 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का राज चलता है। ये बात समझ में आ रही है, या ऐसा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है कि उसमें 4 मनु राज करते हैं, 14 मनु राज करते हैं। बोला एक मनु कितना समय राज करता है, 71 बार चार युग बदलते हैं तब तक एक मनु का राज है, कितना समय हो गया। अब कौन सा मनु का राज चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है इस वक्त, तो ब्रह्मा जी का दोपहर का समय हुआ है, इस वक्त 7वां मनु चल रहा है। आप ब्राह्मण कभी आपके घर में पूजा करने आता है, आपने सुना है
वो क्या कहता है, विवस्वत मनवंत्रे, विवस्वत मनु में, ये विवस्वत मनु का समय चल रहा है। वारा कल्पे, कल्प का मतलब दिन, ब्रह्मा जी का दिन जिसमें वारा देव का अवतार हुआ, वारा कल्पे जम्बू दीपे विवस्वत मनवंत्रे, ये बोलता है, सुना है कभी? तो ये इसकी परिभाषा है। तो ब्रह्मा, जैसे हमारे देश में राज 5 साल चलता है, 5 साल चलता है, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का राज चलता है। एक मनु का राज कितना लंबा चलता है, 71 बार 4 युग बदलते हैं, इतना लंबा राज है। अब कहते हैं वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, अभी 7वां मनु चल रहा है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वान सूर्य देव का नाम है, ये जो सूर्य देव है, सूर्य नारायण, इसका नाम है वैवस्वान। इसके बेटे का नाम है वैवस्वत मनु, वैवस्वान का बेटा वैवस्वत। और भगवत गीता के 4वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सूर्य देव को गीता का ज्ञान दिया और सूर्य देव ने अपने बेटे वैवस्वत मनु को दिया। तो इन दोनों दो का नाम भगवत गीता में आता है, 4वें अध्याय में, आपने कभी पढ़ा है? क्या लिखा है 4वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वा अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राहुर् मनुरिक्ष्वाको अब्रवीत। ये भगवत गीता का अविनाशी योग मैंने पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, उसने अपने बेटे मनु को दिया, वो विवस्वत मनु दिया, और विवस्वत मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के कुल में भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ, उससे पहले गीता का ज्ञान है। तो कहते ये, और फिर कहते 27 चतुर्युगे तार अंतर, अब विवस्वत मनु के भी 27 चार युग बदल गए, 71 में 27 गए। अब कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, अठाईसवां चतुर्युगे द्वापुर शेष व्रजेर सहित है कृष्णेर प्रकाश। जब 28वां चतुर्युगी का कलयुग का अंत आता है, द्वापुर का अंत आता है, 28 के चतुर्युग का सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापुर का अंतिम चरण आया, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते। तो कृष्ण के प्रकट होने का ये नित्य नियम है, हर समय ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के लास्ट पार्ट में, अंतिम क्षण में कृष्ण प्रकट होते। अब कहते हैं कृष्ण प्रकट हो गए, फिर क्या होगा, क्या करते हैं कृष्ण प्रकट हो गए, अभी आपको बता दिया है मैंने, दोबारा सिर्फ सुना रहे। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रसे चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तार वस। कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो न उनको धर्म स्थान पर करने की जरूरत है, ना असुर संहार करने की जरूरत है, ये तो विष्णु का काम है, वो तो आते हैं ये काम करते रहते हैं। कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो क्या कहते हैं, दास्य सखा, बताया ना आपको, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहते हैं उज्जवल रस को, प्रेम को। ये चार ही रसों को लेकर इनके भाव ऐसे भक्तों को अपने साथ लाते हैं, जब अपने धाम से आते हैं तो अपने भक्त लाते हैं, सेवक लाते हैं, सखा मित्र लाते हैं, माता पिता लाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो उनसे प्रेम करने वाले, और गोपियों को साथ में वहां से लाते हैं। गोपियां स्त्रियां नहीं है, कभी मत समझना, गोपियां लड़कियां हैं, गोपी भगवान की शक्ति है, राधा रानी का ही विस्तार है, और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट होती है, भगवान के वाम लेफ्ट साइड से राधा रानी का प्रकट है, कोई स्त्री नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, और उसमें उसको माता भगवान कहते हैं, वो माता भगवान का माता का रूप है, भगवान का माता का रूप राधा रानी है, भगवान का पिता का रूप कृष्ण है, इसलिए भगवान को माता और पिता दोनों कहते हैं। तो दोनों एक है, दो नहीं है, एक शक्ति है, एक शक्तिमान है, दोनों एक ही है, तो ये लड़कियों की बात नहीं है। तो ऐसे जब 28वें चतुर्युग तो कृष्ण आते हैं, ये काम करते हैं। बोला ये काम क्यों करते हैं, दास सखा पिता माना माता कांता गण लैया अपने साथ में सेवक लाते हैं, सखा लाते हैं, माता पिता लाते हैं और प्रेमी गोपियां लाते हैं। ब्रजे कीड़ा करे कृष्णा प्रेमाविष्ट हैया, और वृंदावन में उसके साथ लीला करते हैं। आप कभी भी दशम स्कंद को खोल के पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की तीन जगहों पे लीला है। पहले 3.5 साल तक गोकुल में बाल लीलाएं हैं, और बाल लीलाओं के द्वारा छोटा बच्चा जैसे कुमार अवस्था है भगवान की, तो ऐसी लीलाएं करता है जो माता पिता को अच्छी लगती हैं, जो भगवान को अपना बेटा मानते हैं उनके लिए लीला करते हैं। फिर भगवान वहां से आ जाते हैं वृंदावन में, तब 3.5 साल तक बछड़े चराते हैं और गैये चराते हैं, तब उनके साथ सखा घूमते हैं तो सखाओं को सुख देते हैं, और फिर 7 साल के बाद गोपियों के साथ विहार करते हैं, तब मधुरी रस का पोषण करते हैं। तो ये 3 जगहों पे कृष्ण की लीला है। तो उसके बाद 11 साल के बाद श्री कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं। फिर कृष्ण की लीलाएं जो है वो ये जो काम है ये 11 साल ही होता है, और केवल वृंदावन में होता है। जब ये लीला करते हैं तब बांसुरी बजाते हैं, जब ये लीला पूरी हुई फिर बांसुरी नहीं है, ना मथुरा में बांसुरी है ना द्वारका में बांसुरी, वहां तो कृष्ण जाते ही नहीं है। आप लोग आज सुबह भागवत के क्लास में जो कोई सुन रहे होंगे तो उसमें बताया था वसुदेव और देवकी के पास भगवान श्री कृष्ण 4 हाथों से प्रकट हुए थे, चतुर्भुज, वो विष्णु है, वो विष्णु है, वो ही धर्म की स्थापना करता है, वही असुरों का संहार करता है, ये उसका काम है। लेकिन यहाँ बात चल रही है नंद नंदन की, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की बात नाम चल रही है, ये यशोदा नंदन कृष्ण की बात चल रही है, ये देवकी वसुधर नंदन की बात नहीं चल रही है, ये और है, वो तो समय समय पे आते रहते हैं, लेकिन ये एक बार आते हैं, ये अलग है। और वो इस बार जब कृष्ण आए थे ना, नहीं नहीं देखो नहीं और आवाज करेगा परेशान करेगा, इस बार जब कृष्ण आए थे और चलाना है तो उधर चलाओ, वहां से चलाओ उधर, इस बार जब कृष्ण का आने का टाइम था ना, उनका जो शेड्यूल टाइम था कि अभी आना है, उस वक्त पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया था, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कहने के ऊपर प्रार्थना की थी, तो विष्णु के भी आने का टाइम हो गया था, तो एक ही टाइम बाय दी वे दोनों का एक ही टाइम हो गया, तो दोनों मिलके आ गए, एक ने ब्रज में लीला की और दूसरा फिर मथुरा और द्वारका चला गया, लेकिन दोनों एक में के साथ ही आए थे, दोनों आए, दो अलग नहीं है एक ही, लेकिन भाव में बहुत बड़ा अंतर है। अब कहते हैं यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मन करे हनुमान। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से अपनी लीला पूरी करके वापस अपने भगवान धाम में चले गए तो वहां जाके विचार करने लगे। अब कृष्ण अपनी लीला करके चले गए 5,000 साल पहले, फिर उधर जाके विचार करने लगे। अब क्या विचार कर रहे हैं कृष्ण? जब उनका मन हुआ यहां से चले गए तो उधर विचार करने लगे। चिरकाले नाही करी प्रेम भक्ति दान, बहुत समय से प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है। कृष्ण विचार कर रहे हैं तो बहुत समय से प्रेम भक्ति का दान किया ही नहीं, बहुत समय से प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है, ये कृष्ण विचार कर रहे हैं। भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान, और बिना भक्ति के जगत का उद्धार नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं बिना भक्ति के जगत का उद्धार नहीं होगा, और जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भक्ति नहीं है तो भगवान का जगत का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भक्ति में है प्रेम, बिना प्रेम के बल दुनिया में कोई रह सकता है? बताओ जरा, भगवान का प्रेम तो बहुत ऊपर की बात है, लेकिन घर के अंदर भी प्रेम नहीं है तो कितनी परेशानी है। बच्चे हैं चाहिए प्रेम के लिए, परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, प्रेम के बगैर दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कृष्ण विचार कर रहे हैं चिरकाले नाही करी प्रेम भक्ति दान, बहुत समय से प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है। भक्ति बिना जगते रह नाही अवस्थान, बिना भक्ति के जगत का कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। और फिर सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, सारी दुनिया वाले हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हैं, अरे भगवान बड़े महान हो, भगवान आप बड़े दयालु हो, बस ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं दूर से। विधि भक्ति ब्रजे भावे पाईते नहीं शक्ति, ये जो भक्ति है जिससे मंदिरों में जाके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि गोलोक में भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापित करा सके। इस शक्ति में ये ताकत नहीं है। ये भगवान विचार कर रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं कि विधि भक्ति में फिर कुछ हो गया गड़बड़। हरे कृष्णा, इसको छोड़ो, आवाज तो ऐसे भी जा रहा है, ऐसे ही मेरे को बाहर उठाना पड़ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। ये भाषा भी आपको समझ में आ रही है? सकल जगति मोरी करे विधि भक्ति, सारी दुनिया हाथ जोड़ के मेरे सामने करी है। विधि भक्ति व्रजे भाव पाईते नाही शक्ति, इस भक्ति में व्रज के भाव को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। व्रज का भाव क्या है? भगवान मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा सखा है, मेरा प्रेमी है, ये ऐसा कोई कहेगा क्या? हाथ जोड़ के खड़े होने वाले मेरी ताकत है कहने की? नहीं है, ये नहीं कर सकता। अब भगवान कहते हैं, कृष्ण विचार कर रहे हैं, ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रित, सब जगत मेरे को समझते हैं, मैं मान हूं, भगवान हूं, ये सब यही तो जानते हैं भगवान के बारे में। ऐश्वर्य स्थल प्रेम नाही मोर प्रीति, ऐसा प्रेम हाथ जोड़ने वाले हैं इससे मेरे को ज्यादा सुख नहीं मिलता। इसका मतलब है कि भगवान क्या कहते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उससे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कोई मुझे अपना मानता है। ये मुझे अपना नहीं मानते हैं, भगवान मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, इससे मुझे प्रीति नहीं, इससे मुझे सुख नहीं मिलता है। अब आगे तो कहेंगे कि क्या करते हैं। ऐश्वर्य जाने विधि भजन करिया, वेखुंठ था के या चतुर्विध मुक्ति पाए, ऐसी भक्ति करने वाले ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ में जाएंगे, चार प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरा प्रेम नहीं पाएंगे। ये बहुत ऊप अंदर की बात है, चेतन महाप्रभु के तत्व को समझना है तो ये बहुत गहरी बात है। कहते हैं जो मेरी ऐसे हाथ जोड़ के दूर से भक्ति करते हैं, देखो यहाँ आपको बता दें, पता नहीं आप कितने समय से आ रहे हैं और कितना जानते हैं, हम कर क्या रहे, हमका साधन क्या, कृष्ण भावना में सिखा रहे हैं भक्ति, ठीक है। भक्ति कितने प्रकार की है?
नौ प्रकार।
वो एक नवदा भक्ति है, भक्ति है तीन प्रकार की, आज याद कर लो। क्या भक्ति कितने प्रकार की है? एक भक्ति को कहते हैं साधन भक्ति, साधन भक्ति है नौ प्रकार की। दूसरी भक्ति को कहते हैं भाव भक्ति, जो हमारे हृदय में पहले से भगवान ने डाल के भेजी है, ये कहीं से लाना नहीं है, हमारे अंदर पड़ा है। और तीसरी का नाम है प्रेम भक्ति। साधन भक्ति करके भाव भक्ति को जगाना है, साधन भक्ति करके भाव भक्ति को जगाना है, और भाव भक्ति को पका के प्रेम भक्ति तक पहुंचना है। साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैदी साधन भक्ति और राग अनुगा साधन भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैदी साधन भक्ति जो भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है मतलब मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, मेरा प्रेम नहीं मिलेगा उसमें, वैकुंठ तक जा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, उसको कहते हैं वैदी साधन भक्ति, वो है नवदा भक्ति, ये है वैदी साधन भक्ति। राग अनुगा भक्ति, वो कौन सी भक्ति है? असल में हम जानते नहीं हैं लेकिन जो हरे कृष्णा के भक्तों के संग में आते हैं ना, तो वैदिक भक्ति तो करते हैं लेकिन राग की भक्ति अपने आप इसके साथ चलती है, हमको पता नहीं लगता है। सब लोग तुलसी पूजा करते हैं नहीं करते हैं? रोज तुलसी को प्रार्थना में रोज क्या पढ़ते हैं? वृंदा तो फिर क्या कहते हैं? तुलसी महारानी हमको ब्रज में वास दो, कुंज में वास दो, बोलते हैं कि नहीं? तो तुलसी के भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की भक्त है। कहाँ की भक्त है तुलसी? वृंदा देवी भगवान के वृंदावन धाम की नित्य भक्त है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भगवान के ब्रज के नित्य भक्त है, जो भगवान के गोलोक धाम के नित्य भक्त है, उनको बोलते हैं राग आत्मिक भक्त। क्या बोलते हैं? राग आत्मिक भक्त। जो उनके पीछे चले, उनके चरण चिन्हों में चले, उनका अनुगामी बने, उनका फॉलोअर बने, उसको बोलते हैं राग अनुगा भक्ति। असल में जब तक ये स्तर नहीं समझेंगे ना, जैसे हम एक प्रश्न पूछते हैं सामान्य रूप से और हमेशा पूछते रहते हैं, कृष्ण कौन है?
परमात्मा।
बहुत अच्छा। और कृष्ण कौन है?
भगवान।
और
सब कुछ।
सब कुछ। और ये थोड़ा सा ठीक है, मेरे पिता, मैं उसका बेटा हूं, ये ठीक है। अब आप को कहीं मिल जाए हनुमान जी और आप उससे पूछो राम जी कौन है, तो क्या कहेगा? भगवान है, कहेगा क्या? क्या कहेगा? मेरा स्वामी है ना। और अर्जुन मिल जाए पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगा? भगवान मानेगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ, तब तक असल में हमारी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। इसलिए दीक्षा के समय हमारे नाम के पीछे दास लगाते हैं, इसका मतलब भगवान स्वामी है, हमें उसके सेवक है। हमारी पहली पहचान है भगवान हमारे स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। फिर अगर हमारी भक्ति पक्की होगी तो हमारा सेवक के साथ साथ पता लगेगा कि कौन सा भाव है, भगवान हमारा मित्र है। ये कथाएं सुनेंगे ना तो आपके मन में आएगा, अरे ऐसा रिश्ता हमारा भगवान के साथ होता तो कितना अच्छा है। देखो यशोदा मैया की गोद में खेल रहा है, वहाँ उसका ये भगवान हमारी गोद में ऐसे खेला, ऐसा भाव किसी के मन में आए तो इसका मतलब वात्सल्य भाव है। कोई कहे अरे देखो कृष्ण कैसे ग्वाल बालों के संग खेल रहा है, हमारे साथ ऐसे खेले, तो ये भाव आएगा, सखा भाव है। कोई कहे अरे कितना प्रेम करती हैं गोपियाँ भगवान से, ऐसा भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, तो वो माधुर्य भाव उसका जागृत हो रहा है। तो किसका कौन सा भाव है वो कब जागृत होगा? जब भगवान की लीलाएं सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो कोई कोई खास कथा हमारे को ऐसे आकर्षण होने लगेगी, अच्छी होने लगेगी। और जब अच्छी होने लगेगी तो जो वो भक्त अच्छा लगेगा ना, ये भक्त जैसे भगवान के साथ व्यवहार करता है, भगवान जैसे इसके साथ मिलते हैं, ऐसे मेरे साथ मिले ये जब आए, तो उस भक्त के पीछे खड़े हो जाओ। वो क्या करता है, वो कैसे भगवान को प्रसन्न करता है, कैसे भगवान की सेवा करता है, कैसे भगवान उसके अनुगामी बनूंगे, उसको कहते हैं रागनुगा भक्ति। ये भक्ति या ये भगवान ये कह रहे हैं, ये भगवान सोच रहे हैं वहां, कहते हैं ऐश्वर्य जाने विधि भजन करिया। अरे मेरे को भगवान मान के अगर भजन करते हैं, वैकुंठ था के आए वैकुंठ तक जाएंगे, चतुर्विध मुक्ति पाए, चार प्रकार की मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन परंतु कहते हैं परंतु, ये चार प्रकार की मुक्ति कौन है इसको छोड़ते हैं। अब कहते हैं ये मैं नहीं करने जा रहा हूं, कृष्ण कहते हैं ये तो मैं बहुत बार किया। अब क्या कह रहे हैं? युग धर्म माम संकीर्तन। अब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में सोच रहे हैं, युग धर्म परवर ताइमो, मैं जाके युग का धर्म है उसका इनॉग्यूरेट करूंगा, युग धर्म को इनागिर करेगा। कौन सा युग धर्म है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
तो क्या करोगे भगवान, इससे क्या होगा? ये जो संकीर्तन करेंगे लोग, आप युग धर्म को जाके शुभारंभ करोगे तो लोग क्या करेंगे? तब कहते हैं चारी भाव भक्ति दिया नाचाए मुँह भुवन, लोगों को ये चार प्रकार की भक्ति दूंगा, सा दास्य भक्ति दूंगा, सखा भक्ति दूंगा, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति दूंगा, और इस भक्ति में सारे दुनिया को नचाऊंगा, आनंद में मगन होकर नचेंगे, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा स्वामी है, कृष्ण मेरा बालक है, ये भक्ति का भाव मैं जाऊंगा दूंगा उनको। ये भगवान कहते मैं दूंगा। अब ये देने का जब भगवान के मन में विचार आया तो भगवान ने क्या किया, अपनी करीमु भक्ति भाव अंगीकार। अब मैं खुद ही भक्त बन के जाऊंगा, नहीं तो भक्ति कैसे सिखाऊं? भगवान बन के जाऊंगा तो भक्ति नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए मैं भक्त बन के जाऊंगा। अपनी करीमु भक्ति भाव अंगीकार, अपनी आचार्य भक्ति सिखाई मु सभार। मैं भक्त बन के जाऊंगा और मैं ही भक्ति का आचरण करके भक्ति सिखाऊंगा। कितनी बड़ी दया है भगवान श्री कृष्ण की कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, लेकिन भक्त बन के आए, पूरे भारत में पैदल भ्रमण किया, 4 साल दक्षिण भारत का भ्रमण किया, ओ कन्याकुमारी से लेकर यहाँ बंबई या महाराष्ट्र में पंडरपुर तक आए पैदल चल के, और गली गली में शहर शहर में दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्ण मंत्र गाया, और जहां गए वहां कृष्ण का कथा किया, फिर यहां से जगन्नाथपुरी से बंगाल गए, बांग्लादेश गए, और फिर वहां से वृंदावन गए, प्रयागराज गए, वृंदावन तक गए, इतना सारा 6 साल पैदल घूम के पूरे भारत में भक्ति को सिखाया। भगवान ने कितना बड़ा काम कृपा की है हमारे ऊपर पैदल चल के ये काम सिखाने के लिए। यही कह रहे हैं कि मैं भक्त बन के जाऊंगा और अपने आचरण से भक्ति सिखाऊंगा। अब ये कह के भगवान कहते हैं आपने ना कैला धर्म सिखाना ना जाए। अगर मैं खुद नहीं जाऊंगा और सही नहीं सिखाऊंगा तो धर्म कैसे सिखाया जाएगा। यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। अरे गीता और भागवत में मैंने कहा है ना यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवत्रो जना सयत प्रमाणम कुरुते सद। इसके बाद वही श्लोक है भगवान कह, ये इसके बाद 3-4 श्लोक भगवत गीता के दिए हुए हैं। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन जाएगा, तो मैं ही जाके सिखाता हूं। फिर कहते हैं युग धर्म परिवर्तन है अंश है ते अमा बिना अन्य ना ही ब्रजे प्रेम दीते। अब कहते हैं बाकी काम अवतार का होता है, युग धर्म का स्थापन करना, असुरों का संहार करना, ये तो अवतार करते हैं, लेकिन ब्रज का प्रेम और कोई नहीं दे सकता। और कोई नारायण विष्णु का अवतार ब्रज का प्रेम नहीं दे सकता। ये भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि बाकी सब दे सकते हैं लेकिन अमा बिना मेरे अलावा, अमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीता, और कोई ब्रज का प्रेम नहीं दे सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या सोचा, अब एकदम भगवान कहते संतो अवतार भवत, बहु हजारों अवतार हैं, लाखों अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा। पंकज नाभ भगवान को क्यों कहते हैं, भगवान की नाभि से कमल निकला, तो इसलिए भगवान का नाम है पंकज नाभ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा निकला, उसने सृष्टि की, उसके बहुत से अवतार हैं, ये संकेत मिल रहा है। जितने अवतार धरती के ऊपर भगवान के आते हैं वो सब विष्णु आता है। कौन सा विष्णु, पंकज नाभ गर्भोदकचाई विष्णु, ये उसके अवतार होते हैं। फिर कहते हैं कृष्णाद अन्य को वा लतास्व अपि प्रेम दो भवती, परंतु कृष्ण के अलावा और कोई भी शरणार्थ भक्त भक्तों को प्रेम नहीं दे सकता है। वो धर्म स्थापन कर सकते हैं, असुरों को मार सकते हैं, लेकिन प्रेम और कोई नहीं दे सकता। कृष्ण के अलावा
अतिरिक्त और कोई प्रेम नहीं दे सकता है। ये बात कह के आगे कह रहे हैं, कहाते आपने भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतारी करी मो नाना रंगे। इसलिए मैं अपने भक्तों को लेकर और पृथ्वी के ऊपर जाके अवतार लूंगा और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगा, ऐसे भगवान ने संकल्प किया। अब क्या किया, संकल्प हो गया, फिर क्या करेंगे? एत भावी कली काले प्रथम संध्याय, ऐसा विचार करके कलयुग की पहली संध्या में, हमें पहली संध्या है कलयुग की, तो युग की पहली संध्या में अवतीर्ण हैला कृष्ण अपने नदिया, वही कृष्ण वापस नदिया में, नदिया का मतलब गंगा नदी जहां नौ शाखाओं में बढ़ जाती है, वहां नदिया में भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस विचार से प्रकट हुए, अब क्या कर रहे हैं? ये कैसे थे कृष्ण? चैतन्य सिंहेर नवदीप अवतार, चैतन्य महाप्रभु, सिंह कहते शेर को, हाँ शेर चिंदा, चैतन्य सिंह ने अवतार लिया, कहाँ अवतार लिया? नवदीप, नवदीप में अवतार लिया। नवदीप का मतलब गंगा नौ धाराओं में बढ़ जाती है और नौ धरती के टुकड़े नवदीप कहलाते हैं और नवदीपों के नाम है, ऋतुदीप है के रुद्रदीप है, ये सब दीपों के नाम है वहाँ, तो ये सब दीप है वहां भगवान चैतन्य और श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए। से ही सिंह वसुक जीवेरा हृदय कंदरे कलमश द्रविद नासे यहां रह हुंकारे, कहते वो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं किसी के हृदय में आ जाएं और वो शेर की गज, वो अगर शेर की हुंकार करे तो सारे हृदय में जो पाप ताप है अंधकार है सब नाश हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु हृदय में आए तो हम सबका, हमारा सबका हृदय के अंदर से सब दोष को निवारण कर ले। कैसे हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतार सिंह ग्रीवा सिंह वीर सिंहेर हुंकार, चैतन्य महाप्रभु जब हुए तो उनका ग्रीवा कहते हैं उनका गर्दन से शेर जैसा है, उनमें शक्ति शेर जैसी है और उनकी हुंकार शेर जैसी है, तो सारे गीदड़ जो है वो भाग जाएंगे। कलयुग के अंदर उन्होंने युग धर्म का अवतार किया। अब कहते हैं जब वो धरती पे आए, प्रथमे लीला है तहारा विश्वम्भर नाम, प्रथमे लीला का मतलब जब अभी तक उन्होंने 48 साल तक भगवान चैतन्य महाप्रभु धरती पे रहे, केवल 48 साल, पहले 24 साल गृहस्थ आश्रम में रहे तो उनका नाम था विश्वम्भर और 24 साल के उन्होंने लिया संन्यास तब उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। तो प्रथम लीला एरे तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे करिया धरिला भूत ग्राम, और उन्होंने भक्ति के रस से भर दिया धरती के ऊपर गांव और नगरों को भर दिया और लोगों को पति तपावन है पतन से बचा दिया। और विश्वम्भर का मतलब क्या है? विश्व का भरण पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, तो भगवान माता पिता सब कुछ है, विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। और कहते हैं बाद में शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, संन्यास के बाद इनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैला धन्य, और उन्होंने पूरे पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करके भारतवर्ष में सबको कृष्ण कौन है इसका पता बताया। कहते गौरंगा नहीं होती तो क्या होता, कौन राधा के कृष्ण और प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम का शिक्षा कौन देता, राधा के प्रेम की सीमा का पता कहाँ से लगता। बहुत अच्छा भक्त भजन गाया हुआ है कि गोरा ना होता तो क्या होता, राधा रा महिमा प्रेम सीमा की जाने, कैसे जानते हम राधा के प्रेम का सीमा नहीं जान सकते। तो चैतन्य महाप्रभु के ये दो नाम हुए हो गए। अब कहते हैं जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएगा, ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है। जब कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्ग आचार्य आए तो उन्होंने कहा कि ये हर युग में अवतार लेता है और पीले रंग में कलयुग में अवतार लेगा। तो ये पहले से भविष्यवाणी की है कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु है कौन, तत्व की बात करें, कृष्ण ने सोचा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक अंतर है। ये सुन के फिर आप, मुझे लगता है कि आज का सत्संग थोड़ा भारी लग रहा है आपको, क्योंकि शास्त्र को पढ़ रहे हैं। ऐसे बातें कर सकते हैं लेकिन सिद्धांत नहीं समझेंगे तो कच्चे रहेंगे, कोरे रहेंगे। नीम कच्ची होगी तो बिल्डिंग चलेगी नहीं। भक्ति में हम सब हो, ये हरे कृष्ण आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का शुभारंभ किया हुआ है, तो वो जो आरंभ करने वाला है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हमारा भक्ति की भाव की पुष्टि नहीं होगी। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, लेकिन देने क्या आए, अपने प्रेम भक्ति को। तो कृष्ण के पास अपनी प्रेम भक्ति नहीं होती, भक्तों के पास होती है। तो कृष्ण ने कहा प्रेम भक्ति दूंगा तो किस भक्त को साथ ले जाऊं, भाई ऐसे भक्त को ले जाऊं जिसमें 100% मेरी भक्ति हो। तो भगवान ने देखा भक्तों के अंदर भक्ति तो है लेकिन 10-20-25-50-60% है, बस 100% वाला एक ही दिखाई दिया और वो है राधा रानी, जिसमें कृष्ण की भक्ति नैपुण्य है, परिपूर्ण है। तो भगवान ने कहा इस राधा रानी को साथ में ले लेता। तो श्री कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु में अंतर क्या है, कृष्ण है कृष्ण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण और राधा दोनों साथ, वो दोनों एक हो गए, दोनों मिलके एक हो गए। कृष्ण राधा रानी को साथ लेकर आए, राधा के भाव को लाए, राधा की कांति को लाए, तब चैतन्य महाप्रभु बन के आए। और 11वें अध्याय में मेरे ख्याल में लिखा है कि जो चेतना की महिमा को नहीं जानेगा, मैं कल वो आपको बता ही दूं, फिर आगे चल फिर कथा को पूरा करें। कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐछे प्रभु सची घरे कृपा ए कैला अवतार, सची माता के घर में कृपा करके उन्होंने अवतार लिया। ये यहा करे श्रवण, जो इसका श्रवण करेगा, गौर प्रभु दयामय, चैतन्य महाप्रभु बड़ा दयामय है क्योंकि राधा के भाव में है, दयामय है। तारे है न सद्या से ही पाए त्यार चरण, उसी को ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। अब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं ये सुन लीजिए। पाया मानुष्य जन्म, इसका अर्थ तो सबको आता है ना, पाया मानुष्य जन्म, हमने मनुष्य का जन्म लिया। ये ना सुनिया गौर गण, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत न सुना, महातत्व नहीं सुना, ये कविराज गोस्वामी लिख रहा है कि पाया मानुष्य जन्म ये ना सुनिया गौर गण, भगवान गौर का गुण, चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन नहीं सुना। ये न जन्म तार वैथा कैला, उसका जन्म बेकार गया, उसका जन्म वैरत गया। पाया अमृत ध्वनि पाए विश्व ग्रत पानी, अरे अमृत का कुंड मिल गया, अमृत की नदी मिल गई, मूर्ख अमृत न पी कर और विष पी रहा है। जन्मिया से केन ना ही मैला, वो जन्म आए मरा ही जैसा है, वो मरा हुआ ही समझ लो। ये दो श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं भाग्य से कोई मानव जन्म लिया है और चैतन्य महाप्रभु के गुण नहीं खाए हैं, गुण नहीं सुने हैं, तो उसका जन्म बेकार है। अब बताओ कितने लोगों का जन्म बेकार है दुनिया में, कितनों ने चैतन्य महाप्रभु के गुणों को नहीं सुना है। तो ये बहुत रहस्यमय कथा है। देखो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवत गीता है तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, वो भी 1% भागवत में भारत में नहीं पढ़ते होंगे, 1% भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़े तो भगवान क्या कहते हैं समझ सकते हो। भगवान क्या करते हैं भागवत में, भगवान क्या करते हैं भागवत में, और भागवत कितने पढ़ने वाले, भगवान क्या सोचते हैं वो चैतन्य महाप्रभु है, कितना मुश्किल है सोचते हैं ये समझना, कितना मुश्किल है करते हैं, बोलते हैं तो बाहर से सुनाई देगा, करते हैं घर में आएंगे तब पता लगेगा, लेकिन सोचते हैं इसको समझने के लिए बहुत गंभीरता चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव से भक्ति देने के लिए कृष्ण आए हैं, है कृष्ण लेकिन है राधा के भाव में, है भक्त के रूप में, और प्रेम भक्ति दे रहे हैं, किसके रूप में दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। इसको ले लीजिए, और चैतन्य महाप्रभु की पूजा केवल हरे कृष्ण महामंत्र से होती है, उनकी प्रसन्नता केवल महामंत्र गाने से होती है। आप महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न होके कृष्ण प्रेम दे देंगे। तो कृष्ण प्रेम गाना है चाहिए तो हरे कृष्ण महामंत्र को गाइए, और यही महाप्रभु की पूजा का विधि विधान है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है आज बता दीजिए जरा, आप मेरे को बताइए कौन है चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, चैतन्य प्रभु राधा कृष्ण दोनों एक है, एक तनु है, राधा कृष्ण एक तनु है, चैतन्य महाप्रभु एक शरीर में आ गए। अब हम पढ़ेंगे आप, मैं देख रहा हूँ आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ कुछ सो रहे हैं कुछ झूठ, लेकिन ये तत्व बहुत भारी है। आगे लिखा है कि राधा कौन है कृष्ण कौन है, राधा कैसे प्रकट हुई, फिर ये दोनों मिलके एक चैतन्य महाप्रभु कैसे बने। तो चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का जुगल अवतार है। देखो राधा कृष्ण की सेवा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल हरे कृष्ण मंत्र गाने से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं करुणा अवतार है, महावदन्या है, बड़ा उदार है, आपके दोष को नहीं देखते हैं लेकिन आपको प्रसाद के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, पाप को नहीं देखते हैं, दोष को नहीं देखते हैं। जगाई और माधाई जैसे दुष्ट ब्राह्मण होते हुए भी नशा करने वाले पति तो उनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है वो सबके ऊपर उद्धार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर पाश्चात्य देश के ये हिप्पी भक्त नहीं बन सकते थे, ये इतने सारे पूरे दुनिया के अंदर आज भक्त बन रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और ये कृपा जो हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद ने गाया उसके द्वारा उनकी कृपा से इतने सारे लोग दुनिया भर में भक्त बने। इसलिए कहते हैं कृष्ण प्रेम अगर आपको चाहिए, देखो आपको कभी भी कथा करेंगे कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्त तो आपको कहेंगे हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करना। क्या लक्ष्य है? कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करना नहीं, कृष्ण के प्रेम को प्रकट करना है, पहले यह समझ लो। कृष्ण का प्रेम कहीं बाहर से लाना नहीं, हमारे हृदय में पहले ही पड़ा है, उसको केवल जागृत करना है, जगाना है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभी नहीं, उसको कहीं से हमारे अंदर में पड़ा है उसको जगाना है, लेकिन किसके हृदय में जगेगा, बोला जो चेतन महाप्रभु की कृपा पाएगा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागेगा। बोला चेतन महाप्रभु की कृपा कैसे मिलेगी, बोला जब नित्य आनंद कृपा करेंगे, क्योंकि वो गुरु है, गुरु तत्व है, वो गुरु को शक्ति देने वाले हैं, जब वो कहेंगे तब चेतन महाप्रभु कृष्ण प्रेम देंगे। तो बोला नित्यानंद कब कहेंगे, वो तब कब कृपा करेंगे, बोला जब हम प्रचार करेंगे, किसको, बोला नीच से नीच को, पतित से पतित को, सबको जब प्रचार करेंगे, जैसे प्रभुपाद ने हिप्पियों को प्रचार किया, ऐसा जब प्रचार कोई करेगा तो नित्यानंद प्रसन्न होके उसको चैतन्य महाप्रभु कहेंगे इसको कृष्ण प्रेम दे दो, तब कृष्ण प्रेम एकदम मिल जाए। तो आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु को के शरण में जाना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाने के लिए नित्यानंद की कृपा चाहिए, और वो कृपा प्रचार करने से मिलेगी। तो आप प्रचार सीधा नहीं कर सकते हैं, तो जो प्रचार करते हैं उनका सहयोग करो। प्रभुपाद जी का ये कहना है कि प्रचार करने वालों का सहयोग करो, जो गली गली में गांव गांव में पतितों का प्रचार करने के लिए जाते हैं उनका सहयोग करो, ये आपका प्रचार हो गया। स्वयं प्रचार करो तो सबसे महान है, नहीं तो प्रचार करने वालों का सहयोग करो। ये कृष्ण भावना अमृत संघ का आंदोलन पूरे विश्व में ये कार्य कर रहा है, अफ्रीका के काले उनको, चाइना के लोग उनको प्रचार कर रहा है, तो ये संसार के अंदर से संकट निवारण का साधन है। अभी एक संकट कोरोना वायरस का आया है, लेकिन इसका इलाज भी सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन है। अरे इतना कृष्ण भगवान इतना शक्तिशाली है कि पूरी दुनिया को एक आंखों से देखा नहीं जा सकता। इतने कीटाणु को पैदा करके सारे बड़े बड़े नेताओं को गधा बना दिया, अब कुछ नहीं सोच रहे, करें क्या। तो भगवान एक कीटाणु से सबको उंगली पे नचा सकते हैं, तो जो पैदा कर सकते हैं वो उसको समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन इन मूर्खों को बता रहे हैं कि तुम तो अहंकार हो गया है कि दुनिया हम चला रहे हैं। अरे दुनिया भगवान चला रहा है, ये सब दुनिया चलाने के, वो ये चाइना समझ रहा था मैं दुनिया चला रहा हूँ, अमेरिका समझ रहा मैं चला रहा हूँ, और एक वायरस से इतने डरते हैं कि चूहे की तरह बिल में चले गए। एक छोटे वायरस से भी जो आंखों से देखा नहीं जा सकता उससे डर रहे हैं और समझते हैं कि हम दुनिया चला रहे हैं, हम दुनिया के अधिपति है। भगवान इनको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए कि तुम भाई नहीं, दुनिया मैं चला रहा हूँ, ये तुम एक वायरस का भी निदान नहीं कर सकते हो, मेरे शरण में आओ तो ये वायरस नहीं, सब वायरस समाप्त हो जाएंगे, तुम हमारे साथ थोड़ा संबंध स्थापित करके देख लो। तो भगवान श्री कृष्ण ये दुनिया को दिखा रहे हैं, क्यों दुनिया नास्तिक होती जा रही है, और सबसे बड़ा नास्तिक चाइना है। हाँ तो चाइना ने नास्तिकता को इतनी बढ़ा दी, लेकिन अच्छा काम किया इसलिए जल्दी वायरस खत्म हो गया। जितनी मूर्तियां हमारे घरों में सब चाइना ने बना के भेजी है, ये सब मूर्तियां वो बना के भेज रहा है, पूजा नहीं करता है लेकिन बना के भेज रहा है। जो भी है पशु हत्या करने वाला, जो भी अहिंसा करता है, उसको आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप से आपत्ति आएगी, चाहे वायरस के रूप से आए, चाहे भूकंप के रूप से आए, चाहे सुनामी के रूप से आए, चाहे लड़ाई के रूप से आए, लेकिन ये आपत्तियां आती रहेंगी, ये बंद होने वाली नहीं है। इनका निवारण एक ही भगवान के नाम का कीर्तन है, इस कीर्तन से सारे दोषों का निवारण किया जा सकता है, सारे पापों को धोया जा सकता है, सारे दुखों को नाश किया जा सकता है। ऐसा गीता और भागवत का निर्देश और शिक्षाएं हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैतन्य महाप्रभु आप सबके ऊपर कृपा करें, और उस कृपा का परिणाम ये कि आप सब भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू करो और आपके जीवन को सफल करो। आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया, दर्शन देखा आज अभिषेक का, आपके बहुत पुण्य उदय हुए हैं, और अब आप इसका गंभीरता से कृष्ण महामंत्र को जीवन में धारण कर लोगे तो संसार के सारे संकटों से पार होकर के पार हो जाओगे, और शरीर तो वैसे भी समाप्त होने वाली चीज़ है, रहने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा भगवान के चरणों की प्राप्ति करे और आप भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है, जिज्ञासा नहीं है।